खड़े नहीं रह जाएंगे। ये जो बयान आया उसके ऊपर नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टॉल्टनबर्ग, उन्होंने बहुत ज्यादा बुरा मनाया। उन्होंने कहा कि जी ये जो हैं हमारे यूरोपियन सोल्जर्स जो हैं हमेशा आपने इनको रिस्क के अंदर लाने की कोशिश की है और ये हमेशा खड़े रहेंगे अपने तमाम एलाइज को बचाने के लिए और हम यूनाइटेड हैं और हम फोर्सफुल रिस्पॉन्स देंगे अगर किसी ने भी नेटो के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। ट्रंप साहब ने जिस वक्त ये बात की थी उसके ऊपर जो पोलिश डिफेंस मिनिस्टर हैं व्लादिस्लाव कोसिनियाक, उन्होंने भी कहा है कि हमारा जो मोटो है वन फॉर ऑल ऑल फॉर वन, ये की कमिटमेंट है, जिसका के मतलब है कि ये जो इनका बयान है ये अंडरमाइन करता है, नेटो को कमजोर करने की कोशिश करता है। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल ने भी कहा है कि ये बड़ा ही रेकलेस स्टेटमेंट है क्योंकि आर्टिकल 5 जो है वो सर्व करेगा पुतिन साहब के इंटरेस्ट को। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है कि एक एलआई के ऊपर अटैक जो है सब एलआईज के ऊपर अटैक समझा जाएगा और यूनाइटेड फ्रंट जो है वो बनाया जाएगा। ट्रंप साहब जो है उन्होंने एक जो साउथ कैरोलिना में पॉलिटिकल रैली से खिताब कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा जी कि ये जितने भी डिलिंक्वेंट्स हैं यानी कि वो जो कि क्रिमिनल्स हैं नेटो के अंदर, यानी कि वो लोग जो कि पैसे पूरे नहीं देते हैं नेटो के लिए, तो उन्होंने एक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा इनसे कि अगर अमेरिका कम पैसे दे और रशिया हमारे पे अटैक करे तो क्या तुम लोग जो है यूएस को प्रोटेक्ट करोगे? मुझे नहीं लगता कि तुम लोग करोगे। तो अगर तुम लोग भी पैसे नेटो के अंदर नहीं दे रहे हो तो तुम्हारे अंदर भी ऊपर अगर जो है रशिया अटैक करता है तो मैं उनको बोलूंगा कि प्लीज गो बाय ऑल मींस, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए पे नहीं करूंगा। अब इसके ऊपर तो दुनिया बड़ी भड़क गई है। व्हाइट हाउस के जो स्पोक्स पर्सन है एंड्रयू बेट्स, उन्होंने कहा जी कि ये एनकरेज करना इन्वेजन्स ऑन एलाइज, ये इस तरह की जो रशिया की तरह की मर्डरस रिजीम्स हैं, ये इंतहाई जो है वो अफसोस का बायस हैं और इस तरह से ना सिर्फ आप यूएस की नेशनल सिक्योरिटी को एंडेजर कर रहे हैं बल्कि आप पूरी ग्लोबल जो स्टेबिलिटी और यूएस इकोनॉमी है उसको भी खतरे के अंदर ला रहे हैं। तो इस तरह के बयान जो हैं वो आप ना दें। बहरहाल जी आज ये यूरोप के अंदर काफी जो है इस ये जो कमेंट है ट्रंप साहब के और इवन यूएस के अंदर इसका बहुत ही ज्यादा बुरा मनाया गया है। फिलीपींस का जो साउथ है जी मसारा का इलाका जो है इन डेबाओ डी ओरो प्रोविंस के अंदर, वहां पे लैंडस्लाइडिंग हुई है और वहां पे गोल्ड माइनिंग विलेज जो है उसके अंदर जब लैंडस्लाइड हुई तो इसमें पहले तो आई खबर के शायद 10 या 12 लोग हैं, फिर 20, आज जो सुबह खबर आई है उसके मुताबिक 54 लोगों की डेथ्स हो गई हैं। 300 के करीब रेस्क्यू वर्कर्स यहां पे काम कर रहे थे जिन्होंने बॉडीज को बाहर निकाला है, लेकिन 63 माइनर्स जो हैं वो अभी भी मिसिंग हैं। और ये जो बेचारे सारे माइनर्स थे ये दो बसों के अंदर बैठे हुए थे, अपने जो है पूरे दिन का काम कर चुके हुए थे और घर जाने की तैयारी में थे जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हुई और जिसमें कि ये सारी इनकी दोनों दो बसें जो हैं ये बैरी हो गई उसके अंदर। ऑपरेशंस जो हैं रेस्क्यू के वो तो चल रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ बेतहाशा हैवी रेन हो रही है, थिक मड वहां पे बह रहा है और जो लैंडस्लाइड्स हैं उनके आने का खतरा है जिसकी के वजह से जो सर्वाइवर्स अगर कोई हैं भी तो उनको निकालना या इवन बॉडीज को निकालना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। फ्रांस में आज जनाब जो है वो एक बहुत ही अगेन एक कंट्रोवर्शियल उन्होंने प्लान आज अनाउंस किया है। आपको पता ही है कि इनका फ्रांस का जो एक इलाका है जो कि मेयोटा ओशन आइलैंड ऑफ मेयोटा जो है ये फ्रेंच इंडियन ओशन के अंदर है, ये वन ऑफ द पुअरेस्ट एरियाज है फ्रांस का। इसके अंदर आज फ्रेंच अथॉरिटीज ने अनाउंस किया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अमेंड कर रहे हैं और हम रिवोक कर रहे हैं बर्थ प्लेस सिटीजनशिप। इस सारी की चीज की डिटेल जो है ये इंटीरियर मिनिस्टर जेरल्ड डर्मेनियन ने उन्होंने दी है। वो आज यहां पे आयरलैंड का दौरा कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि ये जो प्रोटेस्ट यहां पे चल रहे थे पिछले 3 हफ्तों से उनसे उन्होंने खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमको ये रेडिकल स्टेप लेना ही पड़ेगा, आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप फ्रेंच नेशनल बन सकें अगर आपके बच्चे का कोई एक पेरेंट एटलीस्ट जो है वो फ्रेंच नहीं है। और वो कहते हैं जी कि हम इसलिए ये स्टेप्स ले रहे हैं क्योंकि हम जो बेतहाशा अनअबेटेड ये जो इमिग्रेशन होती जा रही है हमारे मुल्क में और बड़ी अट्रैक्टिव उनको लगती है कि फ्रेंच हम सिटीजन बन जाएंगे उसको हम डिस्करेज और रिड्यूस करना चाहते हैं। और फ्रांस जो है इस वक्त सिर्फ उन लोगों को ग्रांट करता है सिटीजनशिप जिनका के ब्लड लाइन या के जिनके बर्थ प्लेस जो होती है वो फ्रांस होती है। तो उन्होंने कहा जी कि हम इसको अब बर्थ प्लेस सिटीजनशिप को इस इलाके के लिए सिर्फ सिर्फ ये जो है फ्रेंच इंडियन ओशन आइलैंड ऑफ मेयोटा इसके लिए हम खत्म कर रहे हैं, बाकी फ्रांस के अंदर अगर कोई पैदा होता है तो उसको फ्रेंच नेशनल का दर्जा मिलेगा। आज जो है फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ जर्मनी पोलैंड और फ्रांस जो है वो पेरिस के अंदर जमा है और यहां पे ये डिस्कस कर रहे हैं एड सिचुएशन टू यूक्रेन। वो कहते हैं जी कि हम रिवाइव करना चाहते हैं वेमर ट्रायंगल फॉर्मेट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक फोरम बनाया गया था यूरोप के अंदर क्रॉस बॉर्डर इश्यूज के लिए, 1991 में इसको बनाया गया था ताकि जो यूरोपियन मेंबर्स हैं उनको स्ट्रांग किया जा सके। जब पोलैंड जो है उसमें बहुत ज्यादा जो कम्युनिज्म चल रही थी उसने कम्युनिज्म को छोड़ के इनका साथ दिया था और एक डेमोक्रेटिक वे में चलने की कोशिश की थी। आज पोलिश प्राइम मिनिस्टर जो टस्क हैं उनकी भी मुलाकातें फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों से हुई हैं। एक वर्किंग लंच था एलआईसी प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर जिसके अंदर इन्होंने कहा जी कि हम दोनों कंट्रीज को अपने जो है पार्टनरशिप बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर्स जर्मनी पोलैंड और फ्रांस के जो हैं वो आज जो मिल रहे हैं उसके अंदर वो जो की रोल है सिक्योरिटी और डिफेंस इन यूरोप आफ्टर वॉर इन यूक्रेन उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये मिल रहे हैं पेरिस के सबर्ब में ऑफ लसेले सैंट क्लाउड के अंदर और वहां पे ये अब बातचीत करना चाहते हैं कि भई ये सारी की सारी एड जो है कैसे बढ़ाई जाए और कैसे यूक्रेन के साथ खड़े रहा जाए ताकि वो रशिया के खिलाफ ऐसे ही लड़ता रहे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है आज इनकी मीटिंग हो रही है। यूके के अंदर भी जनाब आज बहुत बड़ी चेंजेस आई हैं। आपको पता ही है कि यूके की गवर्नमेंट जो है वो उसने जो प्लान बनाया था टू डिपोर्ट असाइलम सीकर्स टू अ थर्ड सेफ कंट्री जिसके के बारे में उन्होंने रवांडा के बारे में कहा था उसके आज खिलाफ जो है बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा जी कि ये यूके की ह्यूमन राइट्स ऑब्लिगेशन और इंटरनेशनल लॉ की ब्रीच हो सकती है। ये एक पार्लियामेंट्री रिपोर्ट आई है। लॉ मेकर्स जो है वो आज बात कर रहे थे एक जॉइंट कमिटी ऑन ह्यूमन राइट्स पे और 52 पेज का वो ये रिपोर्ट लेकर आए हैं। वो कहते हैं जी कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ये लेजिस्लेशन बिल्कुल लेकर ना आए क्योंकि यूके के इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के ये अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था इन नवंबर में और उसने भी कहा था कि रवांडा जो है वो एक थर्ड सेफ प्लेस नहीं है इन रिफ्यूजीज के लिए जो कि प्रोसिक्यूशन अपने कंट्री में फेस करते हैं। वो यूके में आते हैं असाइलम लेने के लिए तो उनको यहां पर रहने दें। यह बहुत ही ड्रेकोनियन लॉ होगा अगर आप उनको भेजेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग रवांडा से भी आते हैं उनको मार दिया जाएगा वहां पे। यूके जो था उसने जो था वो कहा था कि नहीं हमारे मुल्क में जो है इमिग्रेशन के बहुत ज्यादा मसले हो गए हैं और इस तरह हमें करना पड़ेगा। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट आज यूके के अंदर हुई आज उन्होंने सैंक्शंस लगाई हैं 4 इजरायली सेटलर्स के ऊपर जिनको कि एक्यूज उन्होंने किया है कि बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस वो कर रहे हैं अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस इन वेस्ट बैंक। ये कॉल उन्होंने उस वक्त ली है जबकि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा है कि हम सैंक्शंस लगाएंगे सेटलर्स के अगेंस्ट क्योंकि वो पैलेस्टीनियंस को उन्हीं के जो अपनी जो इलाके हैं उनके अंदर रहने नहीं दे रहे। आज जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी हैं डेविड कैमरून उन्होंने आज ये अनाउंस किया है कि हम ये जो एक्सट्रीमिस्ट सेटलर्स हैं इनके एसेट्स और ट्रैवल और वीजा सबके ऊपर हम फ्रीज लगा रहे हैं क्योंकि ये थ्रेटन कर रहे हैं पैलेस्टीनियंस को समटाइम्स ऑन गन पॉइंट एंड फोर्सिंग देम ऑफ देयर लैंड्स व्हिच इज राइटफुली देयर्स और इनका बिहेवियर जो है इंतहाई इलीगल और अनएक्सेप्टेबल है। तो पायान सारा ये तमाशा जो उधर मचाया है पैलेस्टाइन में ये तो आपकी वजह से यूके साहब मचाए ना, तो यूके की वजह से ये ना आप लोगों ने पुश किया है ना वहां पे ज्यूज को जाने के लिए कि जाओ उधर पैलेस्टाइन में वो तुम्हारा रहने का इलाका है। अच्छा जी दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय नानन कबोब। आपको पता ही है कि नानन कबोब के बड़े जबरदस्त खाने होते हैं और इनकी जो ये नई लोकेशन है वहां पे आप बैठ के भी खा सकते हैं वहां से आप इनको ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये है 5042 सेटेलाइट ड्राइव यूनिट फिल्मी 3 मिसिसागा में। आप इनको कॉल कर सकते हैं 905-282-9797। इसके अलावा ओंटारियोज लार्जेस्ट पाकिस्तानी हलाल बफे विलेज टेस्ट इस पे आप जरूर जाएं। दो लोकेशन हैं एक 4141 डिक्सी रोड मिसिसागा में दूसरी 2294 लेक शोर रोड वेस्ट ओकविल के अंदर है। ज्यादा आप खाने के ऑर्डर्स देने के लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं एट 905-226-2294। और जनाब हमारे राजा थे बादशाह जी अगर आपको बहुत सारे वो कहते हैं जी मैं आपको डॉलर्स बचाऊंगा अगर वो आप चाहते हैं कि आपके लिए वो बचाएं तो आप उनको कॉल कर सकते हैं एट 647-290-3773। ऑल स्टेट के साथ ये काम करते हैं। अच्छा जनाब पाकिस्तान के अंदर आज बहुत सारी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो है उसके अंदर जो आज की जो सबसे बड़ी खबर वो यही थी कि जो तीन पोलिटिकल पार्टीज के हेड हैं एक तो जहांगीर तरीन साहब जो कि है हेड ऑफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब और पीटीआईपी के जो चीफ हैं परवेज खटक साहब, इन सब ने ये जो ह्यूमिलिएटिंग रिजल्ट्स अभी आए हैं इलेक्शंस के, उसके बाद उन्होंने कहा जी हम रिजाइन कर रहे हैं। तरीन साहब जो है आपको पता ही है कि इमरान खान के बड़े क्लोज एड थे, और ये सिर्फ इनकी पार्टी जो है दो नेशनल असेंबली की और एक केपी जो है प्रोविंशियल असेंबली की सीट जीत चुकी है। तरीन और खटक साहब ने आज तक शुक्रिया अदा किया सब लोगों का जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, और उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया अपने अपोनेंट्स का। सिराजुल हक साहब जो है उन्होंने रिजाइन किया, उन्होंने कहा जी कि हम भी अपने इलेक्टोरल रिजल्ट जो हैं वो हासिल नहीं कर सके, और ये जो है एक भी नेशनल असेंबली की सीट जमात इस्लामी नहीं जीत सकी है, लेकिन केपी के अंदर जो है पांच सीटें इनके पास आई हैं, तो इसलिए इन्होंने भी आज रिजाइन किया। पीपीपी और पीएमएलएन जो हैं जी, उनके लीडर्स के बीच में वीकेंड के ऊपर मुलाकातें हुई हैं। ये मुलाकातें जो हैं बिलावल हाउस में हुई हैं लाहौर के अंदर, और इसके अंदर बहुत सारे जो लीडर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके अंदर जरदारी साहब, बीबी जरदारी, शहबाज शरीफ साहब, आजम तारड़, अयाज सादिक, एहसन इकबाल, राणा तनवीर, ख्वाजा साद रफीक, मलिक अहमद खान, मरियम औरंगजेब, शिजा फातिमा, और जो हैं एहसन इकबाल साहब जो हैं वो भी थे, बहुत सारे और भी लीडर्स इसमें थे। इन्होंने कहा जी कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं इसमें हमको एक पावर शेयरिंग फार्मूला बनाना पड़ेगा, जो कि आपको पता है कि एक दफा इन्होंने पीएमएलएन और नेशनल पार्टी ने बलूचिस्तान के अंदर 2013 में किया था, जिसमें कि दो जो थे वो जो पीएम्स थे वो पांच साल की जो टर्म थी उसमें आधी टर्म में पीएमएलएन का प्राइम मिनिस्टर रहा और आधी टर्म में नेशनल असेंबली जो नेशनल पार्टी जो थी बलूचिस्तान की उसका रहा। उन्होंने कहा जी कि इस तरह की कोई हमको अलायंस बनाने की जरूरत है पीएमएलएन और पीपीपी को। एहसन इकबाल साहब ने इस मौके पर बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा जी कि ये कोलिशन गवर्नमेंट जो है उसी ने पाकिस्तान को 2022 में बैंकरप्सी से बचाया है। पीडीएम की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आई है, और उन्होंने कहा जी कि पीएमएलएन, पीपीपी और एमक्यूएम जो हैं मेजर पार्टनर्स हैं, इनके पास 113 सीट्स जो थी वो 2018 में थी और अब 2024 में इनके पास 152 सीट्स हैं, इसलिए जो पोलराइजेशन बहुत ज्यादा क्रिएट कर दी गई है उसके जख्म भुला के एक फ्यूचर इकोनॉमिक एजेंडा और रिफॉर्म्स की तरफ जाने की जरूरत है। तो ये आज इनके बीच में बातचीत हुई। एक टीवी के ऊपर प्रोग्राम कर रहे थे जी पीपीपी के लीडर नदीम अफसल चंद साहब, और उन्होंने कहा जी कि अगर पीपीपी ने अलायंस बनाया पीएमएलएन के साथ तो उनको बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर वैसे तो दो सबसे बड़ी पार्टीज पीएमएलएन और पीपीपी ही हैं, लेकिन अगर पीटीआई एक्सेप्ट ही नहीं करेगी पॉलिटिकल डायलॉग तो फिर पीपीपी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगी कि वो पीएमएलएन के साथ सिर्फ मिलकर बैठे। हालांकि ये पीपीपी की प्रायोरिटी नहीं है, वो पीएमएलएन के साथ नहीं बैठना चाहती है, लेकिन पीटीआई जो है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए पॉलिटिकल डायलॉग, और ये जो बहुत ज्यादा पब्लिक के अंदर हेट्रेड आ गई है इसको खत्म करने की जरूरत है, खासतौर पे पीएमएलएन के जो अगेंस्ट है। उन्होंने कहा जी कि जो भी कोई हाथ मिलाएगा पीएमएलएन के साथ उसको पॉलिटिकल नुकसान तो उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा ये जो सारी जो इलेक्शंस में इंजीनियरिंग की गई है, लोगों से सीटें खींची गई हैं, इसका भी बहुत ज्यादा जो है बैकलैश आएगा। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब जो हैं और उसकी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं, इस मैंडेट को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, और लोगों ने मुझे वोट इसलिए दिया क्योंकि मैंने जो है हमेशा सिस्टम के खिलाफ बात किया है, लोगों ने अब सिस्टम और विक्टिमाइजेशन के खिलाफ निकल के वोट्स दिए हैं। इसी तरह बिलावल भुट्टो के बारे में उन्होंने कहा जी वो भी सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं इसलिए लोगों ने उनको भी वोट दिए। इसके साथ साथ जो है अफजल चंद साहब के साथ पीपीपी के दूसरे लीडर जो है फैसल करीम कुंडी, उन्होंने कहा जी कि पीएमएलएन के जो पीएम का जो कैंडिडेट होएगा उसको तो शायद हम उसके लिए वोट करेंगे, लेकिन हम उनके साथ मिलकर नहीं बैठ सकते, हम अपोजिशन में बैठना जो है वो पसंद करेंगे। तो पायन ये जो है दो डिफरेंट जो पीपीपी के लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं। आज ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के जो चीफ हैं पीर पगाड़ो साहब, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पगाड़ा हाउस में यहां पे कराची के अंदर, और उन्होंने आपने कहा है कि जी मेरे पास जो दो सीटें हैं मैं उनको वापस कर रहा हूं, मुझे ये चैरिटी की सीट्स नहीं चाहिए। वो कहते हैं जी कि लेकिन मैं आरओज जो है यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर उनको कुछ भी नहीं कहता, ये रिटर्निंग ऑफिसर्स का काम नहीं है कि रिजल्ट उन्होंने मैनिपुलेट किए हैं, ये जो इंटरफेरेंस की है ये अन आइडेंटिफाइड आइडेंटिटीज ने की है, नाम ना लेते हुए उन्होंने ये बात की, और उन्होंने کہا جی کہ میں جو ہے کوئی سپیچ ویچ نہیں دینا چاہتا، مجھے اچھا ہی نہیں لگ رہا کہ میں کوئی سپیچ دوں، یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں یہ اینٹی سٹیٹ ہیں. اور آج انہوں نے ہسٹری کو بھی ریپیٹ کیا، انہوں نے کہا یہ ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوا ہے جیسے کہ 1971 کے الیکشنز میں ہوا تھا کہ ایک سائڈ جو تھی اس نے دوسرے کا جو ہیوی مینڈیٹ اس کو جو ملا تھا اس کو ماننے سے، اس کو ریکگنائز کرنے سے ریفیوز کر دیا تھا. آپ کو پتا ہی ہے کہ 1971 میں عوامی لیگ جو کہ شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی تھی اس کو جنرل الیکشنز میں 167 سیٹس ملی تھیں آؤٹ آف 313، اور ذوالفقار علی بھٹو کو صرف 81 سیٹس ملی تھیں. اور اس کے بعد جو ہے پھر بنگالیوں کو غدار ہیں اور مار پیٹ، اور پھر وہ سارا کچھ کیا، بھٹو صاحب کو پرائم منسٹر بنایا، اس میں بیچ میں سارا جو ملک کے جو ہیں دو ٹکڑے ہو گئے. اسی کا ذکر جو ہے آج پیر پگاڑا صاحب کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ پھر سے وہی سچویشن جو ہے ان لوگوں نے بنا دی ہے. انہوں نے کہا جی کہ مجھے بہت جو ہے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ میں زرداری صاحب کے ساتھ الائنس بناؤں، میں بالکل ان کے ساتھ الائنس نہیں بنانا چاہتا ہوں. جی ڈی اے کے ہی جو صفدر عباسی صاحب تھے اس پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ اب ہم جو ہیں چونکہ بے تحاشا مینپولیشن کی گئی ہے ان الیکشنز میں، اس لیے فرائیڈے سے ہم حیدرآباد بائی پاس کے پاس جو ہیں وہ ہم ایک پروٹیسٹ اپنا شروع کر رہے ہیں، اور ہم پروٹیسٹ نیکسٹ الیکشن تک جاری رکھیں گے جب تک کہ اس ملک کے اندر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز نہیں ہو سکتے. یہ جو کچھ الیکشن اس دفعہ ہوئے ہیں اس میں بے تحاشا دھاندلی کی گئی ہے، ایک پارٹی نے سویپ کیا اور اس کو جو ہے اس کا مینڈیٹ مانا نہیں جا رہا ہے. ہم الیکٹورل انٹیگریٹی مانتے ہیں. اور جو پیر پگاڑو صاحب نے 1971 کے الیکشنز کا ذکر کیا تھا جس میں کہ ذوالفقار علی بھٹو ہارا تھا اور مجیب الرحمان جیتا تھا، انہوں نے کہا جی ہم بالکل یہ انڈورس کرتے ہیں اس بات کو، اور ہم پھر سے ملک کے اندر جو ہے وہ یہ حالات پیدا نہیں ہونے دینا چاہتے. تو آج جناب بڑی گرما گرم پگاڑا ہاؤس کے اندر جناب یہ پریس کانفرنس ہوئی، وچ از رائٹ. ہمیشہ ہمیں بھی یہ کہا گیا ہو جی بنگالی بڑے غدار تھے. غدار کیسے تھے؟ مسلم لیگ تو بنائی بنگالیوں نے تھی، اور مسلم لیگ کو فنڈ کون کرتا تھا؟ بنگالی جو نواب تھے وہ فنڈ کرتے تھے، تو وہ کیسے ہو گئے بھائی غدار ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جس وقت ایوب خان صاحب بھی فاطمہ جناح کے خلاف کھڑے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے کون تھے؟ مجیب الرحمان صاحب فاطمہ جناح کے ساتھ، تو وہ ڈیموکریٹک لوگ تھے. تو یہ ہے. آج جناب پی ٹی آئی کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے اس کی ملاقات پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے پھر سے وہی ساری باتیں کی ہیں جو یہ الیکشن کے اندر ارریگولیرٹیز جو ہیں وہ آئی ہیں. آج رعوف حسن صاحب اور عمر نیازی جو ہیں انہوں نے ملے، اور انہوں نے کہا جی کہ جو فارم 45 ہیں ان کی بیسس پہ ڈفرنٹ کانسٹیچوئنسیز میں بالکل سویپ کیا ہے پی ٹی آئی کے ورکرز نے، لیکن وہاں پہ سارے کے سارے ریزلٹس جو ہیں وہ چینج کر دیے گئے ہیں. کہ ہم نے جو ہے بہت زیادہ فائٹ کیا، آپ کو پتا ہی ہے کہ ہماری پارٹی کو پریشرائز کیا گیا، ہمارا پول سمبل لیا گیا، اریسٹ کیے گئے، اور پھر بھی پی ٹی آئی نے اگینسٹ آل آڈز جیتا ہے. ہمیں ہمارے اوپر بہت سارے اٹراسٹیز کی گئی، پھر بھی پبلک نے پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ ٹرسٹ شو کیا، اور جو ہے اس کے اوپر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور آپ سٹیپ لیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج ایک نیوز کانفرنس بھی پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے کی، اور انہوں نے بھی پریزیڈنٹ صاحب کو انوائٹ کیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے وہ ہم کو بلائیں اور ہم کو جو ہے نیشنل اسمبلی کے اندر گورنمنٹ فارم کرنے کی دعوت دیں، کیونکہ سب سے زیادہ میجورٹی میں جو سیٹس جیتی ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹس کی ہے وہ پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے یہ الیکشن لڑا ہے اور جیتا ہے. وہ کہتے ہیں جی بیرسٹر گور نے کہا جی ہماری کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن گورنمنٹ جو ہم بنانا چاہتے ہیں ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن اینڈ لا، تو یہ ہم کو اجازت دی جائے. اب یہ جب سب باتیں چل رہی ہیں اور ریزلٹس جو ہیں ان کو بہت میسو طریقے سے آلٹر کیا گیا پاکستان میں، اس سلسلے میں آج نہ صرف جی ڈی اے جس کا میں نے بھی ذکر کیا بلکہ پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور ٹی ایل پی جو ہیں انہوں نے آج ای سی پی کے دفتر کے باہر جو ہیں ایک مورچہ نکالا. جے آئی کے کراچی کے امیر انجینئر حافظ نعیم الرحمان جو ہیں انہوں نے بھی اناؤنس کیا سٹ ان ایٹ 8 میجر اسپاٹس، اور پی ٹی آئی کے جو لیڈر تھے آفتاب جہانگیر، بیرسٹر عبد الجلیل، انہوں نے بھی جوائن کیا ان پروٹیسٹ کو. جے آئی کے لیڈرز جو ہیں اسامہ راضی، منیب ظفر، سیف اللہ اور دوسرے لوگوں نے ان پروٹیسٹ سے کیا خطاب کیا، اور وہ پلیک کارڈز بھی کیری کر رہے تھے جس میں کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو پولنگ ریزلٹس ہیں ان کو پھر سے پراپرلی ٹیبولیٹ کیا جائے اور سامنے لایا جائے، اور ای سی پی کے خلاف انہوں نے نعرے لگائے. اس موقع کے اوپر جو انجینئر حفیظ صاحب ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم کراچی کو ٹارگٹ کلرز کے حوالے سے پھر حوالے نہیں کر سکتے، ہم یہاں پہ پھر سے این ایرا آف بلڈ اینڈ ہیٹ نہیں شروع کر سکتے. پی ٹی آئی کے لیڈرز جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ ووٹ جو ہے اس کو چوری کیا گیا ہے اور یہ مینڈیٹ ہم चोरी नहीं करने देंगे, हम भी अपने प्रोटेस्ट जो हैं अब शुरू करेंगे और अपनी लीगल बैटल भी कंटिन्यू रखेंगे। टीएलपी के जो प्रोटेस्ट, टीएलपी ने भी कहा कि हम प्रोटेस्ट हम भी जारी रखेंगे क्योंकि ब्लेटेंट रिगिंग की गई है। इसमें एक बहुत अच्छा काम जो जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर जो रहमान साहब ने किया, उन्होंने कहा जी कि PS-129 सिंध असेंबली की जो सीट थी उसके अंदर पहले जो पीटीआई का जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था सैफ बारी, वो जो है जीत रहा था मेरे से, और फिर जो है मुझे जिता दिया गया। वो जीत रहा था 26,296 वोट्स के साथ, लेकिन जिस वक्त फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें सैफ बारी के 11,357 वोट्स दिखाए गए और मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा ब्लेटेंट रिगिंग है। एज अ रिजल्ट मैं अपनी सीट जो है फोरफीट कर रहा हूं PS-129 सिंध असेंबली की इन फेवर ऑफ पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है सैफ बारी। उन्होंने कहा जी कि वो जेन्युइनली विन किए हैं और मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। उनके रिड्यूस किए गए थे जानबूझ के वोट्स, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, और मैं इस सीट के ऊपर बिल्कुल नहीं बैठूंगा, इसलिए मैं उनके हक में ये सीट जो है छोड़ रहा हूं। बड़े लोगों ने आज छोड़ी है मजद भाई, शुक्र है कुछ तो लोगों का ईमान जो है वो जागा ही है। अच्छा जनाब, पीटीआई जो है उसने कहा है कि अब हम जो डिफरेंट जगहों में पंजाब के अंदर जो हैं वो कर सकते हैं, मोर्चे निकाल सकते हैं। इसके ऊपर आज बात करते हुए पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जो हैं मुसन नकवी साहब, उन्होंने कहा जी कि हां मोर्चे निकालें, आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करने का बिल्कुल हम इजाजत देंगे, लेकिन अगर आपने May 9 के राइड्स किए, जो कि मुझे लग रहा है कि आप इस तरह की वायलेंस करेंगे, तो उसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी और आपके खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा। आज ये मीडिया के साथ लाहौर में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि पीस फुल मोर्चा निकालने पे किसी को रोका नहीं जाता है, लेकिन जो अगर आपको रिजल्ट पसंद नहीं है जो आए हैं, तो आप रिलेटेड फोरम्स जो हैं उनके साथ जाके बात करें, इस तरह के प्रोटेस्ट जो हैं वो ना निकालें। आपको बताइए कि सारी दुनिया कह रही है कि जो अनऑफिशियल रिजल्ट्स आए थे उसमें पीटीआई जो है उसने स्वीप किया था नेशनल असेंबली की 90 सीट्स के ऊपर और 116 सीट्स इन पंजाब असेंबली। केपी के अंदर तो उनको 2/3 मेजोरिटी आई थी और उन्होंने 84 सीट्स आउट ऑफ 113 जो कंटेस्ट की गई थी वो जीती थी, और इसी तरह जो है वो सेंटर के अंदर भी, तो यानी कि नेशनल असेंबली की 90 और बाकी, तो इसलिए उनको कहा जा रहा था कि वो अब जो है हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि जैसे जैसे डिले आते होता गया रिजल्ट, तो उसके बाद जो रिजल्ट्स है उसमें उसको दिखाया गया कि उन्होंने क्लियर मेजोरिटी नहीं ली है। तो उस सिलसिले में ये बात कर रहे थे आज मोहसिन साहब कि अगर आपको रिजल्ट अच्छे नहीं लग रहे तो आप यानी ECP के पास जाएं, हमारे पास ना आए। ये जो बहुत ज्यादा शोर मचा है जो कि लोग सामने अब लेकर आए हैं, जैसे कि मोहम्मद अली बुखारी, नवाज शरीफ और शोएब शाहीन वगैरह की जो थी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, जिसमें कि NA-15 मानसेरा, NA-47 ICT और NA-48 ICT, यानी कि जो इस्लामाबाद की जो ये दो सीट्स हैं उनके ऊपर ECP ने अब जो है वो स्टे लगा दी है और उनको कहा जी कि इसके रिजल्ट्स जो हैं अभी वापस नहीं आएंगे, और उन्होंने आरोज जो है उनको कहा जी कि अपनी रिपोर्ट्स दें। ये जो वोटिंग थी यहां पे 854 नेशनल प्रोविंशियल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हुई थी एंड अकॉर्डिंग टू इनिशियल रिजल्ट 348 इंडिपेंडेंट्स जो थे वो जीते थे, जो कि मोस्टली बिलोंग करते थे PTI से, लेकिन ECB जो है उसने कहा था कि जी PMLN जो है दैट हैज इमर्ज, ECB यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, PMLN जो है वो दैट हैज इमर्ज एज द लार्जेस्ट विनिंग पार्टी विद 227 सीट्स। PPP के बारे में उन्होंने कहा कि उसने 160 सीट्स ली हैं, MQMP ने 45 सीट्स ली हैं, और जो नेशनल असेंबली के इंडिपेंडेंस हैं उन्होंने 101 सीट्स ली हैं, PMLN ने 75, PPP ने 54, MQMP ने 17, JUI ने 4, PMLQ ने 3, इस्तकामे पाकिस्तान पार्टी और BNP ने 2 ईच एंड 1 ईच बाय मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान, पश्तून खा नेशनल अवामी पार्टी, बाप पश्तून खा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, PMLN जिया, और जो इंडिपेंडेंट से वो लीड कर रहे थे पंजाब और KP में, जहां पे उन्होंने 90 सीट्स जीती आउट ऑफ 138। PPP जो है उसने सिंध में 84 सीट्स जीती और बलूचिस्तान में PPP और JUI ने 11 सीट्स ईच, लेकिन जाहिर है कि जो PTI है वो इसको मानने को तैयार नहीं है और अब तो बाकी लोग भी इसको मान नहीं रहे हैं ना कि ये सब कुछ जो है बिल्कुल गलत हुआ। हिंदुस्तान के अंदर जी फिर से प्रोटेस्ट आ रहा है वापस फार्मर्स का। जो फार्मर्स हैं आज उन्होंने फिर से मोदी जी की गवर्नमेंट के खिलाफ जो हैं वो नारे लगाए और ये पंजाब और हरियाणा से ज्यादातर हैं, और ये अब दिल्ली में जो हैं कल से आना शुरू होंगे अंडर डेली चलो प्रोटेस्ट। और ये आज देखा गया है कि अपने ट्रैक्टर ट्रॉलर्स और गाड़ियां और बाइक्स और बसेस, उसके अंदर जरूरी सामान, अपने टेंट्स और बेड्स और वुड और खाने पीने की चीजें और दूसरे एसेंशियल आइटम्स जो थे वो रख के ये लेकर आ रहे हैं। वो कहते हैं जी कि ये जो हमारा पीएम मोदी ने प्रोटेस्ट खत्म करवाया था नवम्बर 2022 में और हमसे वादा किया था कि हमारी डिमांड्स मानेंगे, वो एक भी इन्होंने डिमांड नहीं मानी है, लिहाजा हम फिर से मोर्चा निकालने जा रहे हैं। ये सारे जो प्रोटेस्ट हैं ये शुरू हो रहे हैं पंजाब के अमृतसर से टू अम्बाला और फिर कुरुक्षेत्र में हरियाणा से और ये हाईवे से होते हुए जो है ये दिल्ली में पहुंचेंगे। और अमृतसर से जो प्रोटेस्ट चला है वो उन्होंने पहले प्रेयर्स की अकाल तख्त जो है वहां पे गोल्डन टेंपल में और उसके बाद अमृतसर में और उसके बाद से ये आ रहे हैं। ये जो प्रोटेस्ट की कॉल है ये संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने दी है। आपको पता ही है कि जो पहली जो थी समायुक्ता किसान मोर्चा, उसने जो पहले ये कॉल दी थी उसके ये अगेंस्ट है, वो इस दफा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इस सब चीजों से निपटने के लिए हरियाणा की गवर्नमेंट जो है उसने अब कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। 12 लार्ज ब्लॉकेट जो है पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे उन्होंने लगाए हैं और बीच बीच में जो खिला है उनको सीमेंट से बंद कर रहे हैं, बैरिकेड्स लगा रहे हैं, जो रोड है उसके ऊपर जो है वो कीले लगा रहे हैं ताकि ये ट्रैक्टर जो है इनके टायर फटें और ग्रेवल जो है बहुत सारा इकट्ठा करके साइडों पे लगा रहे हैं। हरियाणा पुलिस जो है वो भी गांव गांव जाके अब छापे मार रही है और देख रही है कि फार्मर्स की क्या मूवमेंट है और जो जो उनको मिलता जा रहा है उसको वो उनके खिलाफ रेड्स करके उनको पकड़ रहे हैं और पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो ये फिर से जनाब किसानों का जो है सिलसिला हिंदुस्तान में शुरू हो गया है। मोदी जी जो हैं वो अब कतर पहुंचेंगे फरवरी 14 को। वैसे तो उन्होंने ओरिजिनली यूएई में जाना था लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो एक डेफिनेट एक स्टॉप ओवर जो है वो देंगे और जो कतर के अमीर हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी उनसे ये मुलाकात करेंगे। इनकी मुलाकात बहुत ही छोटे से टाइम के लिए जो सीओपी समिट यानी कि जो वेदर चेंज के ऊपर समिट हो रही थी दुबई में दिसंबर में, उसमें इनकी हुई थी और उसमें इन्होंने कहा था कि ये जो 8 नेवी के फॉर्मर अफसर पकड़े हुए हैं जिनको के डेथ सेंटेंस दी गई थी स्पाइंग चार्जेस के ऊपर कतर में, उस सिलसिले में इन्होंने बात की थी। मोदी जी जो हैं वो जो यहां पे कतर का सरप्राइज विजिट कर रहे हैं उसके ऊपर बात करते हुए फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा ने कहा है कि जी पीएम साहब जो हैं वो ये सारी की सारी जो सिचुएशन थी इंडिया के फॉर्मर नेवी अफसरों की उनको मॉनिटर कर रहे थे और वो हमेशा से इनिशिएटिव लेने को तैयार थे, इसीलिए वो हर किस्म के लीडर के साथ भी बात कर रहे थे। तो वो कतर को भी कह रहे थे, कतर की जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है उसने अक्टूबर 26 को लास्ट ईयर इनको सजाए मौत दी थी, उसी वक्त से मोदी जी इनके साथ बात कर रहे थे और उनकी सारी ये बातचीत और जो उनका जो इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से आज सारे के सारे 8 के 8 ये जो स्पाइंग में पकड़े हुए इंडियन नेवल अफसर थे उनको छोड़ दिया गया है और उनमें से 7 जो हैं आज वो हिंदुस्तान पहुंचे हैं और 8वां जो है उसके बारे में कहा जा रहा है वो भी जल्द आएगा। अलबत्ता कतर की गवर्नमेंट ने 8 को आज छोड़ दिया। ठीक है जी, पर खुश हो। अच्छा माजिद भाई, आपने सुपर बोल देखा है वीकेंड पे?
यस 100%।
कैसा लगा आपको?
हाउ कुड यू मिस इट? अमेजिंग बट दिस ईयर
क्योंकि बहुत सारे सितारे आए
बिकॉज ऑफ द ओवर टाइम। मैं गेम की बात कर रहा
हूँ। हाँ, गेम की।
बिकॉज ऑफ द ओवर टाइम इट लास्टेड अ बिट मोर एंड गॉट इनटू वेरी इंटरेस्टिंग।
बिल्कुल, तो ये हो रहा था जनाब एलिजिएंट स्टेडियम में पैराडाइज नेवाडा के अंदर और इसके अंदर जो ये एनएफएल की चैंपियनशिप थी ये खेली जा रही थी कैंसर सिटी चीफ्स के खिलाफ जिन्होंने के विन किया अगेंस्ट सैन फ्रांसिस्को 49ers बाय 25-22 और इसके अंदर बहुत सारे स्टार्स नजर आए जैसे कि टेलर स्विफ्ट, एलॉन मस्क साहब भी यहां पर पहुंचे हुए थे, जैक डॉर्सी, रैपर आई स्पाइस, एक्ट्रेस ब्लेक लाइवली, सिंगर सॉन्ग राइटर लाना डेलरे, किली स्पेरी एक्ट्रेस एंड वाइफ ऑफ माइल्स केलर, जे जी उसकी बेटियां ब्लू आईवी एंड रूमी और बियॉन्से जो हैं वो भी आई हुई थी और बियॉन्से ने तो अपने नए जो एल्बम है उसका भी ऐलान किया। तो काफी जो है स्टार स्टडेड किस्म का ये इवेंट।
अशर वाज देयर एंड ही
अमेजिंग जबरदस्त किस्म की, बहुत ज्यादा एग्जैक्टली। अच्छा जनाब, कंगना रावत साहबा जो हैं उन्होंने आज अपनी इंस्टा स्टोरीज के ऊपर लिखा है कि वो एक दफा से फिर से जो है कोलैबोरेट कर रही हैं आर माधवन के साथ। 2 फिल्में इन्होंने की हैं माधवन के साथ, तनु वेड्स मनु 2011 में और फिर उसका जो सीक्वल आया था तनु वेड्स मनु रिटर्न्स 2015 में। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि अब हम एक बहुत पैन इंडिया साइकोलॉजिकल थ्रिलर के ऊपर काम कर रहे हैं और मैं बड़ी खुश हूं मैं इनके साथ फिर से काम करने लगी हूं। ये बड़ी ही स्टनिंग स्क्रिप्ट है और चेन्नई में इसकी फिल्मिंग शुरू हो गई है और हमको आपकी सपोर्ट और ब्लेसिंग्स चाहिए ताकि हम इस तरह की बनाएं। ये फिल्म जो है एक दफा फिर से विजय बना रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त साउथ के डायरेक्टर हैं। माधवन ने भी बड़ी आज खुशी का इजहार किया, उसने कहा कि जस्ट वक्त में ये पावरफुल औरतें जो हैं कंगना रनावत या शालिनी इन इसकी तरह की औरतों के साथ काम करता हूं तो इट इज माई गुड फॉर्चून कि ये इतनी स्ट्रांग औरतें हैं जिन्होंने कि बदलावा लाया है जो हमारी इंडस्ट्री में। ये क्लीशे किस्म की हीरोइंस नहीं है जो आती हैं बस एक आध गाना वाना गाया और गायब हो जाती हैं, बल्कि ये बड़ा सॉलिड काम करने वाली हैं एंड आई एम एब्सोल्युटली इन ऑ ऑफ कंगना रनावत। ठीक है, खुश हो पाए हाँ ठीक है जी। अच्छा जी, और जना मिथुन चक्रवर्ती दादा 73 इयर्स ओल्ड हॉस्पिटल में गए थे क्योंकि बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे और इनको कोलकाता के प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया था क्योंकि उन्होंने चेस्ट में पेन जो थी इनको हो रही थी उसकी उन्होंने किया था, लेकिन आज इन्होंने कहा है कि आई एम एब्सोल्यूटली फाइन और मैं जितनी भी अपकमिंग फिल्म्स हैं उनके मैं शूटिंग रिज्यूम करने वाला हूं और एक्चुअली मुझे हुआ कुछ नहीं था, सिर्फ मेरे जो बैड फूड हैबिट्स हैं उनकी वजह से मुझे ये चेस्ट का पेन आया था और असल में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मैं अब जो है वर्कआउट शुरू करूंगा और मे बी कल से ही मैं अब वर्कआउट शुरू कर दूंगा।
क्या बात है, ओनली हिम।
हाँ ओनली हिम, या आई नो एग्जैक्टली। और क्या क्रेज था मिथुन चक्रवर्ती का किसी जमाने में माजद भाई, ओ माय
पागल
पागल थे दुनिया इसके पीछे।
ट्रू हीरो,
ओ यस और सही इसकी जो स्टोरी है रैग्स टू रिचेस वाली।
ये सारे लोग डांस करना अब उन्होंने शुरू किया।
हाँ, जिस वक्त इसकी डिस्को डांसर आई थी उसने क्या तहलका मचाया था उस वक्त, और वो डायरेक्टर ने इसको वही वो डांस करते हुए ही देखा था तो उसने इसको जो है वो लिया था। और ओ माय गॉड क्या इसका क्रेज था, लोग वेट कर रहे होते थे, मुझे याद है कि ये वीडियो शॉप्स के बाहर के मिथुन की फिल्म आई। और जनाब पीसीपी ने आज रिवील किया है अपना लाइन ऑफ एलीट लाइन ऑफ कमेंटेटर्स जो कि कमेंट्री करेंगे पीएसएल 9 के अंदर। इसके अंदर होंगे ईन बिशप, साइमन रूल, डोमिनिक कॉर्क, माइकल हेजमैन, मार्क बाउचर, पॉमी बंगावे, डैनी मॉरिसन। इसके अलावा होंगे जी माइकल क्लार्क, आपको पता ही है कि वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, वो तो अपना डेब्यू करेंगे इसके साथ जो है वो कमेंट्री के साथ। और लोकल जो कंटिजेंट होएगा उसमें होंगे रमीज राजा, वकार यूनस, आमिर सोहेल, बेजाद खान। इसके साथ साथ जो हैं फॉर्मर जो फीमेल क्रिकेटर्स हैं वो भी होंगी, सना मीर, उरूज मुमताज, मरीना इकबाल और जैनब अब्बास और एरन हॉलैंड जो हैं उनको ऑफिशियल प्रेजेंटर्स जो है वो एक दफा फिर से बनाया जा रहा है। पीसीबी ने जनाब आज अनाउंस किए हैं मैच ऑफिशियल्स भी फॉर एचपीएल पीएसएल 9 जो कि चार जगहों के ऊपर होएगा स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी 17 टू मार्च 18। और इसके अंदर जो माइकल गो होंगे वो और अब्दुल जो है मुकीत, अलीम डार, तारिक रशीद, शहजाब रजा, राशिद रियाज, फैसल अफरीदी, रुचिरा पलिया गुरुगे, आसिफ याकूब, एलेक्स वार्फ, नासिर हुसैन, इमरान जावेद, मोहम्मद आसिफ, ये जो हैं गू जो हैं इन्होंने ऑफिशिएट किए हैं 34 मैचेस जब से पीएसएल शुरू हुआ है, वार्फ ने 11, श्रीलंका के जो पली या गुरुग जो हैं उन्होंने 3 किया है, न्यूजीलैंड के गफैनी जो हैं वो पहला मैच इस्तीफा करेंगे अपने डेब्यू के अंदर। मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के बीच में जो मैच होएगा मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ऑन फरवरी 18। इसके अलावा रोशन महनामा जो हैं वो अपने 9 सक्सेसिव ईयर में ऑफिशिएट करेंगे और वो लीड करेंगे अपनी 3 मैच रेफरी टीम जो है उसको, जिसके के अंदर हैं अली नकवी एंड मोहम्मद जावेद। ओपनिंग मैच जो है वो होएगा डिफेंडिंग चैंपियंस लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में लाहौर में, जिसको कि ऑफिशिएट करेंगे अलीम डार और माइकल गू। और इसके अलावा जो हैं तारिक रशीद वो टीवी एम्पायर रहेंगे, शहजाब रजा जो हैं वो रिजर्व एम्पायर रहेंगे और मोहम्मद जावेद जो हैं वो मैच रेफरी रहेंगे। तो ये जनाब आज सारे इन्होंने ये भी अनाउंस किए हैं। एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट ऑस्ट्रेलिया, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम जिसने के इंडिया को हरा के वर्ल्ड कप जो है चौथी दफा जीता है। ये मैच हो रहा था साउथ अफ्रीका में, उन्होंने इंडिया को हराया 76 रन से। इंडिया जो है वो चेस कर रही थी 254 का जो उनको टारगेट दिया गया था, बहरहाल उनको बोल आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने 174 रन्स में माहली ब्यूडम जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे, उन्होंने 3 विकेटें ली फॉर 15 रन्स फ्रॉम 7 ओवर्स। इंडिया की तरफ से आदर्श सिंह जो है वो टॉप स्कोरर रहे विद 47 रन्स। इंडिया के राज लिम्बानी जो है उन्होंने 3 विकेट्स ली 33 के ऊपर। और ऑस्ट्रेलिया जो है अब ऑस्ट्रेलिया अंडर 19, ये अंडर 19 टीम है, ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 वर्ल्ड कप टाइटल 4th दफा जैसे मैंने आपको बताया वो जीता है। इंडिया जो है इस टाइटल को 5 बार जीत चुका है, तो अब ये भी कोशिश करेंगे।
एक पसंद कहता नहीं यार अंडर 19 वगैरह,
हाँ ये नहीं हम खेलते रहे, लड़कों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी लेकिन बस ये फाइनल तक नहीं पहुंच सके। बड़ा अच्छा खेली थी पाकिस्तान की अंडर 19 की टीम, दे प्लेड वेरी वेल।
यू टॉकिंग लाइक जितने भी ये टोरंटो के प्रोफेशनल्स है ना,
हाँ
जैसे ब्लू जेज हो गई, हाँ, रैप्टर्स हो गई,
ये प्रोफेशनल है, जीतते तो कभी नहीं है।
और सुनो तो मेरी गलत सुन ले, नीले जय हो गए या पत्ते हो गए, हाँ, मेपल लीफ हो गए, हाँ, या आपके
सूखे पत्ते का ग्रुप
रैप्टर्स हो गए, ये पहले से बता देते कि दिस ईयर वी गोना प्ले 500 मींस के आधे हारेंगे आधे जीतेंगे। तो यार तो मैं पैसे क्यों खर्च करूं तुम्हारे पे, मैं क्यों देखूं तुमको मैं,
हाँ।
या ये कि वो जो है और दे प्लेड वेरी वेल, दे प्लेड वेरी वेल, आई सेड व्हाट्स द स्कोर, दे लॉस्ट, फॉरगेट इट, दे डिडंट प्ले वेल, यू प्ले वेल व्हेन यू
विन,
विन
व्हेन यू विन,
डजंट मैटर यू वेंट टू फाइनल्स, अगर आप नहीं जीते हैं तो यू डिडंट प्ले वेल, सो दैट मीन्स द अदर टीम हु वॉन प्लेड वेल एंड दे वॉन। तो आप जैसे कह रही है ना कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है,
नहीं नहीं, अपने अपने ग्रुप के उन्होंने सारे मैचेस जीते थे लेकिन फिर वो सेमीफाइनल में हारे और फिर उसके बाद
फाइनल क्या हुआ
नहीं जीत सके खुश हो।
बॉटम लाइन इज यू विन, यू विन, यू प्लेड वेल, यू डिडंट विन डजंट मैटर, यू वेंट टू फाइनल्स, यू डिडंट विन, यू डिडंट प्ले वेल। पहले अच्छा खेला होगा आपने, पूरे पूरे मैचेस जीत गए अपने, क्वार्टर फाइनल भी जीत गए, सेमीफाइनल में क्या हुआ
जीत नहीं पाए ये तो वही बात है जो आमिर ने की है, वो जो खीर में उसने लाई थी है जी,
हाँ जी,
उसने कहा कि ये खीर बुरी नहीं है
हाँ बुरी नहीं है ये
बुरी नहीं है सच्ची भी नहीं है लेकिन उसने ये नहीं कहा, तो इसी तरह हम भी कह रहे हैं जीत नहीं पाए,
नहीं नहीं
हम ये नहीं कह रहे हार गए,
बुरी नहीं है। तो आपने बनाई थी खीर,
हाँ
तो आप क्या समझी
मैं समझी कि वो आप सब लोग के को बहुत अच्छी बनी हुई है, हाँ
मगर अगर किसी एक शख्स ने कहा कि ये
बुरी नहीं है
तो इसका मतलब आप द कुक, हाउ डिड यू फील कि यार बुरी नहीं है का मतलब है
कितनी भी बुरी नहीं है मतलब खाई जा सकती है
अच्छी नहीं है
नहीं पर ठीक ही है,
नहीं नहीं बुरी नहीं है
बुरी नहीं है पर ठीक ही है, पर अच्छी भी नहीं है,
अच्छी नहीं है।
उसका ये मतलब था, मेरा मतलब ये था कि अगर बुरी नहीं है तो खाई जा सकती है, ठीक ही है।
यू टेक इट वेरी पॉजिटिव,
हाँ हाँ भाई मैं तो बड़ा पॉजिटिव बंदा हूँ ना, इसीलिए मैं आपको पता है कोविड पॉजिटिव हो गई थी मैं आप पॉजिटिव बंदे नहीं है इसलिए आप कोविड पॉजिटिव नहीं हुए,
तीन दफा
हाँ बिल्कुल, तीसरी दफा तो हमने परवाह ही नहीं की,
अब तो पॉजिटिव नेगेटिव
परवाह ही नहीं की, हमने कहा हमने टीके इतने बेशुमार,
पाकिस्तान की दवाई खा लो,
हाँ हो बस
पाकिस्तान की दवाई खाई एकदम सही हो,
एकदम सही, मजा
जरासीम कहाँ गए पता ही नहीं लगा,
पता ही नहीं चला,
खुद कह रहा था वो खुदा का वास्ता है की गल,
और ये पाकिस्तानी के पेट में किधर भेज दिया हमें।
ये थी हमारी आज की न्यूज एंड बकिया की न्यूज इंशाअल्लाह ताला बशर जिंदगी कल फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और बहुत कुछ होने वाला है दुनिया में, बहुत कुछ हो रहा है, तो ये सारी चीजें सुनने के लिए आप हमारे साथ होया करें 4:45 बजे, 4:45 बजे से लेके हम अभी तक, देखिए अभी तक बैठे हम, मैं तो जा रहा हूँ,
आपकी बुरी किस्मत
मैं तो जा रहा हूँ अभी अभी शायद यही बैठी होंगी थी,
हाँ जी, हाँ
ये ये नहीं जाती है, इनको बड़ा शौक है,
मुझे बड़ा शौक है,
कहती है मैं
वर्क इज वर्शिप फॉर मी,
इनको हलीम ला दो एंड
समोसे और जलेबी,
मतलब आज आपको पास्ता कैसा लगा,
ओ अमेजिंग
अमेजिंग
अमेजिंग,
सी पास्ता खाने पीने की बातें करो जी
अमेजिंग,
इंशाल्लाह ताला बहुत शुक्रिया,
थैंक यू, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह,
हम आपको रीच करते हैं अब जीशान की जाने पर, जीशान आपको एंटरटेन करेंगे एंड आज मगरिब की नमाज, मगरिब की अजान का टाइम 5:45 है, آپ یہاں آزان سنیے گا, اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ضرور یاد رکھا کریں, اینڈ باقی کی باتیں انشاءاللہ تعالی کل ایک نعتیہ کلام کے ساتھ آپ کو میں چھوڑے جاتا ہوں. کل تک کے لیے
خدا ہی حافظ. جی تو
اللہ حافظ.
مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں, مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں, پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں, پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا یہ دامن ہمارا مرادوں سے بھر دے, یہ دامن ہمارا مرادوں سے بھر دے, میں سب کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, دعا مانگتا ہوں.
WTOR Youngstown, Toronto now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music. Yeah.
शक्ति चला रहा है वही खुदा है कोई तो है जो निजाम हस्ती चला
वही खुदा है आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाइना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशे आपके लिए, विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। रेडियो 770 AM, वॉइस ऑफ कम्युनिटी। फॉर मोर डिटेल्स विजिट eawaz.com।
आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। चले तो फूल जैसे आंचल के रंग से सज गई राहें, सज गई राहें।
आओ मैं पहना दूं चाहत का हार, ये खुली खुली बाहें, खुली खुली बाहें। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले,
कदम के निशान बना के चले।
Dil sadak sadak